ऐसे सुनना चाहिए मानो हम सब लोग ज्ञान सागर के अंदर डूबे हुए हैं। हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर बस ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान वो आनंद है, इसलिए एक आनंद के सागर के अंदर डूबे हुए हैं। अरे वो आनंद वो प्रेम है, तो प्रेम के सागर में डूबे हुए बस एक आनंद है, जिसके बाद दूसरी वस्तु है ही नहीं। वही आनंद है, वही अमृत है, वही प्रेम है। तो भगवत प्रेम का विषय स्मरण का निश्चय किया है। वास्तव में तो प्रेम जो है वो वाणी का विषय है नहीं, जिसको हम क्या सुनाए। जो भगवान के प्रेमी है वे भी नहीं सुना सकते, तो हम आपको क्या सुना। प्रेम तो समझो कि हृदय का भाव है, वो वाणी से कैसे प्रकट किया जा सके। भगवान प्रेममय है, प्रेम स्वरूप है, और हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है, उसमें वो प्रेम समाता नहीं। और बुद्धि जो है वो तो प्रेम के सागर की एक बूंद को आभास मात्र, यानी उसे के प्रतिबिंब को ग्रहण करती है। आयना जो है वो आकाश के एक अंश के प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, सारा आकाश उसको नहीं समाता। तो बुद्धि आईने की जो दर्पण की जो हो शुद्ध हो तो वो प्रेम के एक अंश के प्रतिबिंब को ग्रहण कर सके, शुद्ध हो स्थिर हो। सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि पर, और बुद्धि के अंदर जो भगवान का प्रेम का भाव आता है, प्रेम का भाव जो है उसका प्रादुर्भाव होता है। मन की कल्पना में नहीं आता, और उसका कोई अंश मन के कल्पना के बीच के मां आता है, वो कुछ एक प्रकार से रूपक या उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता है, तो उतनी वाणी की हिम्मत नहीं, वाणी की वो शक्ति नहीं कि वो उसको समझा सके। जो प्रेम को प्राप्त होता है वो ही उस प्रेम को जानता है। ये समझाने के लिए कहना है, वास्तव में तो वो खुद प्रेममय हो जाता है। तो प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम तीनों चिन्मय है और धातु से एक ही है, स्वरूप अलग अलग सा है। जैसे सोने के बहुत से आभूषण होते हैं तो उन आभूषणों की गणों की धातु सोना ही है, सुवर्ण उसकी धातु है, किंतु गण का नाम रूप अलग अलग होता है। ये कंठी है या कड़ा है, ये अमुक आभूषण है, वो तो गालने से सब एक ही हो जाता है। तो जब प्रेम के बीच के वहां सब बह जाते हैं, सोना गलगड़ के द्रव्य भाव को प्राप्त हो जाता है तो एक ही बन जाता है। तो इस प्रकार से थी, ऐसा वो अलौकिक प्रेम रस है। तो उस प्रेम रस का स्वरूप वर्णन करना कठिन। जिस किंचित किसी अंश का वर्णन किया जा रहा है तो सुनने वाले जो भाई लोग हैं, माताएं हैं, उनके कानों में सारी बातें एक बार से सुनने में नहीं आती, क्योंकि उनका मन चंचल होने से कहीं दूर दूर चला जाता है तो उतना हिंसा छूट जाए। और सुना हुआ भी याद नहीं रहता, क्योंकि परिवर्ष जो है उसको एक रूप से समझ में आ गए तो वो मन से पकड़ा जाए। और जितना एक प्रकार से मन पकड़ता है उतना बुद्धि में उसका धारण नहीं होता, धारण हुआ तो बड़ा पार। तो हम लोगों को एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए। प्रेम की प्राप्ति का उपाय है मन से प्रेमास्पद जो भगवान, प्रेम स्वरूप जो भगवान, उसके स्वरूप का मनन, उसके नाम का मनन, उनके गुणों का मनन, प्रभाव का मनन, उसकी लीला का मनन करने से उसका प्रेम का तत्व रहस्य समझना। तो मनन करना या उसके नाम रूप गुण प्रभावों का एक गायन करना, इससे प्रेम बढ़ता है। और प्रेमी भक्तों का संग करना, इससे भी प्रेम बढ़ता है। और प्रेम विषय शास्त्रों का पढ़ना और इस विषय की तीव्र इच्छा होना कि प्रेम कैसे हो भगवान, और सारी इच्छाओं का त्याग करना, सारी इच्छाओं से रहित होकर के केवल भगवान के मां प्रेम होने की इच्छा होना और विश्वास होना कि भगवान है और मिले हैं और मिलते हैं और मुझको भी मिलेंगे, ऐसा विश्वास होने पर ही भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा होती है। वो तीव्र इच्छा ही भगवान को मिलाने वाली। प्रेम विशुद्ध होना चाहिए, कोई प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम जो प्रेम है वही असली प्रेम है। विशुद्ध और निष्काम प्रेम होना चाहिए। एकांत के वहां बैठ करके और मन से थी भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, उसके गुणों का चिंतन करना, उसके प्रभाव का चिंतन करना और मन से थी समझो कि भगवान से मिलना, भगवान का दर्शन, भगवान से वार्तालाप, भगवान का अनुसरण, चरणा का स्पर्श, तो भगवान का जो लक्षण भाषण सप्रस वार्तालाप चिंतन सब एकदम अमृतमय है, प्रेममय है, रसमय है। प्रेम ही रस है, रस ही प्रेम। उसका आस्वादन करना, जिसे कोई वस्तु हम सेवन करें, कोई वस्तु का भोजन करें तो उसका स्वाद लें, किसी में हमारा मन रमे तो मन के द्वारा उसका स्वाद लें, ऐसे भगवान के मां सब इंद्रियों से अपने रमण करना। नेत्रों से भगवान का जो दर्शन है वो नेत्रों के द्वारा रमण है, वाणी से उसके नाम और गुणों का वर्णन है तो वाणी के द्वारा रमण है, कानों से भगवान की बातों जो सुनना है वो कानों से भगवान में रमण है, हाथ से भगवान को जो स्पर्श करना है वो हाथ से भगवान का रमण है, नासिका से भगवान में जो सुगंध लेना है वो नासिका से भगवान में रमण है, श्वासों के द्वारा स्वाभाविक ही भगवान की स्मृति होती है वो श्वासों के द्वारा रमण। तो इस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियां भगवान में लगा दी, तो इससे थी भगवान के मां प्रेम का प्रादुर्भाव होता। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परं कथियं तस्य मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। हाँ, भगवान कहते जिनका मेरे में चित है, मेरे नाम रूप और गुण प्रभाव का मन से चिंतन करता रहता है, मेरे में जिनका चित वास करता है, मुझको छोड़कर के क्षण मात्र भी इसका चित दूसरी जगह नहीं जाता, ऐसे जो पुरुष है वो उसको भगवान कहते मच्चित्ता मेरे में चित वाले है। जैसे गोपियां के लिए कहा कि मन मनुष्य का मेरे में जिनका मन बसे वो मन मनुष्य का, तो मच्चित्ता और मदगत प्राण, मदगत ही जिनके प्राण हैं, मेरे लिए जिनका जीवन है, मेरे प्रति अपने प्राणों का जिन्होंने समर्पण कर दिया है, और मेरे वियोग के मां जो विरह में व्याकुल है, जल के वियोग में जैसे मच्छी जो है सो व्याकुल हो जाती है, मच्छी के प्राण जो है सो जलगत है, जल के बिना वो जी नहीं सकता, इसी प्रकार से मदगत प्राण वे पुरुष है जिनके प्राण मेरे बिना देह में नहीं रह सकते, और बोधयंत परस्पर और परस्पर के बीच के मां मेरा जो तत्व रहस्य है उसको जानने के लिए और एक दूसरे को समझाता है, भगवान की बातों को सुनकर करके और एक दूसरे से बात करते समय के बीच के मां एक दूसरे को भगवान का तत्व समझावे, बोधन करावे, एक दूसरे को ज्ञान करावे, भगवान ऐसे है, भगवान के नाम का तत्व रहस्य है, भगवान के गुणों का तत्व रहस्य है, भगवान के प्रभाव का तत्व रहस्य है, इस प्रकार से भगवान का जो तत्व है रहस्य एक दूसरे को समझावे वो बोधयंत है परस्पर, और कथयंत मांग नित्यम, और नित्य जो वाणी के द्वारा मेरे गुण प्रभाव तत्व है इसकी बातों का तुरंत करता रहता है, वाणी के द्वारा मेरे नाम रूप लीला और धाम की बातों को जो कथन करता रहता है, और इससे करके मुग्ध होता है, संतोष लाभ करता है, और इस प्रकार से नित्य मेरे में रमण करता है। तुषंति रमंती, रमन करना जिसे बतलाया, मन और इंद्रियों के द्वारा भगवान के स्वरूप का संयोग, भगवान के विग्रह के साथ में संबंध,
दर्शन भाषण से प्रश्न वार्तालाप चिंतन इस प्रकार से जो रमण करे इंद्रिया मन बुद्धि और उस रमण से होने वाला जो आस्वादन जो स्वाद जो सुख आनंद उसको तुषंति इस प्रकार के करने से उसमें उत्पन्न होता है प्रेम और उस प्रेम से फिर होता है भगवान का भजन उसको फिर भगवान देते हैं ज्ञान और उस ज्ञान से भगवान को तत्व से जान करके और उसको प्राप्त हो जाता है। एसां सतत युगतानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति। पूर्व में जो बतलाये श्लोक के भावों के अनुसार प्रेम से भगवान कहते हैं कि जो मुझको भजते हैं सो भी निरंतर सतत युगतानां मुझ परमात्मा में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक जो मुझको नित्य निरंतर भजते हैं निष्काम भाव से उन मेरे भक्तों को मेरे बुद्धि योग यानी मेरे विषय का ज्ञान भगवत विषय का ज्ञान भगवान देते जिसके प्रभाव से भगवान को यथार्थ रूप से वो प्राप्त हो जाता है जान जाता है। भगवान जैसा है जैसे है जिस प्रकार के जितने हैं उसको जान जाता है भगवान का साकार निराकार सगुण द्विगुण जो स्वरूप उसको प्राप्त हो जाता है समझ जाता है ये उसका फल जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं उस वक्त के वहां ऐसा एकदम मुग्ध हो जाता है उसको अपने आप का होश नहीं रहता है केवल भगवान का ज्ञान रहता है और भगवान के दर्शन होने के साथ ही एक टक भगवान को देखता रहता है पलक भी नहीं मार सकता उसकी शक्ति नहीं वहां से दृष्टि वो हटा ले भगवान जब सायंकाल के वक्त के वहां बालक अवस्था के वहां जब गौं को चरा करके की बच्चों को चरा करके पर घर पर आते थे तो अपने अपने द्वारे के ऊपर खड़ी गोपियां उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और उनका दर्शन करके मंत्र मुग्ध की मां हो जाती थी उनका कैसा ही स्वरूप जो हो गो धूली दूषित हो और चाहे जो जैसा हो है तो भगवान ना शरीर के पसीना आ जाता और गर्द जो है रस्ते की धूल उड़कर उसमें जम जाती तो एक प्रकार से वो भगवान का धूली से छिपा हुआ जो स्वरूप है वो भी उन्हें तो एक प्रकार से समझो की एक अलौकिक रूप में से दिखा जो मूड है उनके लिए भगवान अपना पर्दा डाल देते हैं किंतु उन प्रेमी भक्तों के लिए नहीं। जब प्रेम भक्ति के मार्ग एकदम निवन हो जाता है तो उसके कैसे लक्षण होते हैं सुंदर विलास जो प्रेम था उसके वहां सुंदरदास जी ने एक कविया कहा है बहुत ही एक उसे प्रेम लक्षण भक्ति का है न लाजती न लोक की न वेद को कहो कर न संक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे सुने न कान और की दर्शे न और इतना कहे न मुख और बात भक्ति या प्रेम लक्षण। उस वक्त के बीच के वहां भक्त इतना उसमें मग्न हो जाता है तीनों लोगों के वहां किसी की भी उसको लाज नहीं आती है लाज का ज्ञान नहीं रहता कि ऐसा मुग्ध हो जाता है अपने आप को भूल जाता है संभाल नहीं सकता तो अब लज्जा पूर्ण कर और शास्त्र की जो मर्यादा है वेद की जो मर्यादा है उसका भी वो पालन नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेम के बीच के वहां अपने मुग्ध हो जाता है बेहोश हो जाता है उसको अपने आप का शरीर का मर्यादा का और ये सब ज्ञान ही नहीं रहता। और संघ भूत प्रेत यक्ष राक्षस देवता आदि किससे वो वह नहीं करता। संघ भूत ये प्रेतों की एक जातियां हैं, वो किसी का भय नहीं करता। सुमेन कान और की दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं, किसी की आवाज भी वो सुनता ही नहीं, और उसको और कुछ दिखता भी नहीं। सब प्रेम में भगवान के सूर पर कुछ दिखता भी नहीं, और उसके मन में भी कोई इच्छा नहीं रहती किसी बात की। तो भगवान मिल गए तो इच्छा की क्या आवश्यकता, तो सब इच्छा अपने आप ही पूर्ण हो जाती। पर अपने वाणी से दूसरी बात वो कहता है, उसकी वाणी से वो प्रेम की बात ही कहता है। प्रेम कोई अलापता है, प्रेम के स्वर कोई दूसरा शब्द उसके मुख से नहीं निकलता, तो वो प्रेम में हो जाता है। भगवान भी प्रेम में है, वो भी प्रेम में, तो वो भगवान की माफी की प्रेम में हो जाता है, तो फिर भगवान उसके बिना रह नहीं सकते, वहां प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपने आप को अर्पण कर देते हैं, उस प्रेमी के सुख से सुखी होते हैं। परस्पर के वहां उनका जो मिलन वार्तालाप चिंतन दर्शन भाषण सब जो है सो उत्तरोत्तर प्रेम को बढ़ाता रहता है। यदि जब पूर्ण प्रेम न प्राप्त हो जाए तो क्या बढ़ावे, तो एक भक्तों का भाव है कि वो प्रेम हर वक्त नित्य नया ताजा रहता है, इसलिए कहा जाता है कि वो प्रेम है सो बढ़ता रहता है। उस समय के बीच के वहां आदर सत्कार नहीं, मान नहीं, वहां कोई लज्जा नहीं, वहां भय नहीं, भक्त जो है निर्भय हो जाता है, और एक प्रकार से उसके हृदय में जो संकोच है, भय है, मान है, आदर सत्कार है, वह सब समाप्त हो जाता है। अपने से भगवान को अगर वो देखता ही नहीं तो भय किसका करे, भय तो दूसरे का होता है, लज्जा भी दूसरे से होती है, संकोच भी दूसरे का होता है, आदर भी हम दूसरे का करते हैं, सत्कार भी दूसरे का करते हैं। अपने आप का कोई सत्कार थोड़ा करता है, अपने आप का कोई आदर थोड़ा करता है, अपने आप से कोई डरता थोड़ा या अपने आप से कोई लज्जा थोड़ा करता है। कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी मुग्ध हो जाता है, जो करके बोलता है तो उसका कोई सिलसिला नहीं। ये सब कब होते हैं कि जब भगवान दर्शन देकर के एक प्रकार से फिर छिप जाते हैं, तो विरह की बात होती है। भगवान के देह में नियोग के बीच के मां उसको चैन नहीं पड़ता, और फिर भगवान प्रकट हो जाते। तो भगवान के मिलने के उपाय बहुत से हैं, उनके वहां भगवान के ध्यान की जो मैं बात की वो बहुत अच्छा उपाय है। सुतीक्ष्ण जी इस प्रकार से भगवान राम के ध्यान में मस्त हो गए थे, ऐसे मस्त हुए कि वे रास्ते में बैठ गए और शरीर के ऊपर रोमांच हो गए, जो कठहर के फल के जैसे कांटा, और ध्यान में ऐसे मस्त हुए कि उनको अपने आपका ज्ञान नहीं रहा, पहला तो दिशा का ज्ञान दिया पूर्व पश्चिम दक्षिण, और फिर अपने आपका भी ज्ञान नहीं रहा। ऐसी स्थिति को भगवान वहां जंगल के वहां एक वृक्ष की ओट में झुके हुए देख, भगवान को उस देखने का बड़ा मजा आता। फिर भगवान उसको पास में आए, फिर आकर उसको उठाने की चेष्टा करी, जगाने की, प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए। वो ध्यान में मिले सुख में ऐसा मुग्ध हो गया कि भगवान के जगाने पर भी नहीं जागा। तो भगवान ने सोचा भी क्या उपाय करें, तो तेरे ध्यान के मामले से मैं जो प्रत्यक्ष आ गया उसकी भी परवाह नहीं, ऐसा ध्यान में मस्त हो गया क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान कराना चाहिए ना। तो भगवान ने उसको स्पर्श करके के भी समझो की चेष्टा करी, उठो उठो जिद प्राण सम, हे मेरे प्राण के समान प्यारे तुम उठो, पर छूने से भी नहीं उठी। तो भगवान ने अपने योग बल से थी, जो सुतीक्ष्ण जी ध्यान कर रहे थे उस स्वरूप को खींच लिया। अब वो खींचने के समान व्याकुल हो गए, जैसे मणि वाला सांप और मणि को छीन जाने से जैसे व्याकुल हो जाता है, फिर आंख खुले तो जिनका ध्यान कर रहे थे तो सामने प्रत्यक्ष विराजमान हो रहे थे। अब तो समझ गए ठीक है सब इन्हीं का काम है। तो फिर अपने गम मुग्ध हो गए चरणों के बीच के मां लौट गए। भगवान ने उठाकर अपने हृदय के लगाया और खूब प्रेम से मिली। फिर एक प्रकार से थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो भगवान की स्तुति करी, स्तुति भी कौन करे। और फिर वहां अपने कुटिया में जाकर के उनकी पूजा करी सब प्रकार से। फिर भगवान अगस्त के आश्रम में जाने लगे, तो बोला अब मैं भी आपके साथ चलूंगा, अब मैं आपके साथ में चलता हूं, इसके बीच में कोई आपका निवारा नहीं है, आप यहाँ आए वो तो ठीक है, वो तो आप का एक प्रकार से मैं ऋणी हूँ, किंतु अब मैं साथ में चलूं उसमें तो कोई आपका किरावर नहीं। और साथ में गए, इस प्रकार से थी भगवान से अपने प्रेम करना चाहिए जिसे सुतीक्ष्ण ने किया। ऐसे मुग्ध होना चाहिए भगवान के ध्यान के मां। भक्तों की जो स्वाभाविक स्थिति है वो साधक के लिए वो साधन है। सुतीक्ष्ण जी की जैसी स्वाभाविक स्थिति थी, हम लोगों को उसको साधन बना करके उसको लक्ष्य में रख करके उसी प्रकार से भगवान में प्रेम करना चाहिए। ये हमारे लिए साधन है साधकों के लिए।